राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम शिष्य गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पार श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता। तत्पश्चात त्रिदंडी वैष्णवगण वैष्णवीगण एवं उपस्थित सज्जन मंडली और बेटा और बेटियों और माताओं सबको मैं अपना यथायोग्य सादर संभाल अभिनंदन करता हूं। कल हमने श्री रामचंद्र जी की लीलाओं में उनके अवतरण का कारण इत्यादि सब मैंने बतलाया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। महाराज दशरथ रघुकुल या इक्ष्वाकुकुल में पैदा हुए। मूल सूर्य उनके हैं, आदि वंश के पहले पितृ पुरुष सूर्य हैं, इसलिए इनको सूर्य वंशीय राजा कहा जाता है। कृष्ण और राम ग्वाले और क्षत्रिय नहीं है, सूर्य वंशी क्षत्रिय राम नहीं है, वो तो स्वयं भगवान है। जगत का कल्याण करने के लिए उस वंश में प्रकट हुए। यदि वो क्षत्रिय रहते तो हम लोग उनका प्रसाद नहीं लेते। कृष्ण यदि ग्वाले होते तो उनका प्रसाद कौन लेता, इसलिए ऐसा नहीं। जहां कहीं भी यदि शुक्र कुल में भी पैदा होते हैं तो वराह देव का नृसिंह देव का हम लोग प्रसाद लेते हैं, कूर्म देव का लेते हैं। इसलिए भगवान किसी जाति में नहीं बधे हुए। ऐसे वैष्णव लोग भी यदि कोई शुद्ध वैष्णव हो, वैष्णव तात्पर्य शुद्ध हो, ऐसा नहीं कि वैष्णव के नाम पर अभी वैष्णव नहीं है, संसार में फंसे हुए हैं, वैष्णवता है नहीं, वो नहीं। जो सचमुच में वैष्णव है उसका भी कोई जाति और समाज नहीं, वो स्कूल में आए हैं पवित्र करने के लिए। कहीं ना कहीं तो उनको आना ही पड़ेगा, या तो खंभे में से भी आना पड़ेगा। तो सूर्यवंशी राजाओं में बहुत इक्ष्वाकु, रघु, दिलीप, भगीरथ इत्यादि बहुत से बड़े बड़े राजा, उनकी अपना अपना बहुत बड़ा भारी महत्व रखता है। उसमें आप भगीरथी गंगा भी उन लोगों की लाई हुई है, पहले ये नहीं थी। उसी तरह से भगवान रामचंद्र इसी कुल में आए। पिता का नाम दशरथ, माता का नाम कौशल्या, किंतु ये पीछे बातें हैं। महाराज दशरथ जब राजकुमार थे उनका रथ दसों दिशाओं में चलता था, अर्थात तो दसों दिशाओं को, आकाश पताल को भी और सारी दिशाओं को भी उन्होंने विजय कर लिया था। 360 रानियां पटरानियां थी और रानियां को तो की गिनती नहीं, पटरानियां ही 360। उनमें दो प्रधान थी, कौशल्या जी और सुमित्रा, किसी को भी बेटा नहीं हुआ। अब महाराज दशरथ अधेड़ उम्र में आए। अधेड़ उम्र माने उस समय का समझिएगा 50-60 हजार वर्ष की आयु, सतयुग में तो लाखों वर्षों की आयु होती थी, त्रेता युग में थोड़ी सी रह गई आधी, और द्वापर में उससे भी आजकल कलयुग में अधिक से अधिक 100 वर्ष की आयु मान लेकर के चल सकते। तो जब वो उनके केश आधे पक गए आधे काले रहे तो बड़े चिंतित हुए कि हमको कोई लड़का तो है नहीं, तो हमको पिंडदान कौन करेगा और हमारे बाद में राज्यों को कौन देखेगा, जैसा कि संसार के लोग सोचते हैं। हमारे भक्तों के पिता इत्यादि भी माताएं भी ये सोचती हैं और सोचते हैं कि हमारे बाद में हमारा बेटा यदि भक्त हो गया, हनुमान जैसा ब्रह्मचारी हो गया तो फिर क्या होगा, होना बड़ा कठिन है भाई, किसी के कहने और सोचने मात्र से नहीं हो जाता। महाराज दशरथ विचार कर रहे थे, एक दिन ऐसे ही करते करते आखेट के लिए वो चले शिकार खेलने के, शाम हो गई और शाम होने पर पास ही कैकेय देश था जिसको अफगानिस्तान इत्यादि कर सकते हैं, उसी के तरफ में था निकट में ही पंचाली पंचाल देश पंजाब की रहने वाली थी, ऐसे ही वो आसपास में ही वो कैकेय का राज्य था, राजा का नाम था कैकेय। अपने मित्र के पास में गए, आज यहीं पर विश्राम करके कल सवेरे हम अयोध्या में लौट जाएंगे और अयोध्या बहुत दूर है। गए महाराज ने अपनी सुंदरी किशोरी लड़की कैकेयी को, अभी 13-14 वर्ष की, उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया। बेटी ये हमारे मित्र आए हैं, इनको रहने के लिए खाने पीने और सारी चीजों की व्यवस्था तुम कर देना, किसी दूसरे नौकर पर नहीं छोड़ा, अपनी बेटी पर छोड़ा। वो बहुत बुद्धिमती थी, बहुत बुद्धिमती और सुंदरी भी थी। उसने महाराज दशरथ की बड़ी सेवा की, खाने पीने से लेकर के सोने इत्यादि सारी व्यवस्था परिपूर्ण रूप से कर दी। जब सवेरा हुआ, जब महाराज दशरथ चलने के लिए हुए तो महाराज कैकेयी से कहा, महाराज मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप मित्र होने के नाते हमारी बहुत सेवा शुश्रूषा की, विशेष करके आपकी लड़की बड़ी सुंदरी और बड़ी दक्ष है, जिस प्रकार कुशलता से बुद्धिमत्ता से मेरी सेवा की मैं बहुत प्रसन्न हो गया। दूसरी बात एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि इस लड़की को मुझे आप कन्या दान कर दीजिए, ये बहुत ही अच्छी सेवा करती है, बुद्धिमती है, शादी तो करेंगे ही कहीं ना कहीं, तो मेरे साथ में शादी कर दीजिए। उन्होंने कहा जी भाई तुम हमारे मित्र हो, फिर भी मैं ये बात नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि तुम्हारी तो 360 पटरानियां हैं, एक एक से सुंदरी है गुणी है, इसलिए यदि उनको लड़का पैदा हुआ तो वही राजकुमार होगा, राजा का स्थल पर वही राजगद्दी पर बैठेगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा, मैं तो यही वहीं पर साधु करूंगा जहां पर मेरे लड़की से पैदा हुआ लड़का ही राजगद्दी का मालिक हो। तो महाराज हंसने लगे, बोले जी हमको तो कोई लड़का ही नहीं, और यदि बाई चांस इससे लड़का हो गया तो राजगद्दी पर बैठेगा, अब दूसरा कौन बैठने वाला है। बस बहुत मुझे प्रसन्नता है और आपका प्रस्ताव स्वीकार है मुझे, आप इस लड़की का कन्यादान कर दे। तो उन्होंने कहा जी देखो याद रखना, भूलना मत, इसके दर्द से यदि कोई पुत्र पैदा हुआ तो इसी को राजगद्दी देनी होगी। ये ठीक है, बैठ जाओ चुप जाओ हिल्ला मत। तो शादी हो गई, बड़े धूमधाम के साथ में शादी हुई और गए अपने राजधानी में लौटे और कौशल्या जी ने, सुमित्रा जी ने अपनी नई छोटी बहन का बहुत ही स्वागत किया। देखने में भी खूबसूरत थी, अभी छोटी उम्र की है इसलिए और भी खूबसूरत और गुणी भी थी। घर में रहने लगी। उसके लिए महाराज दशरथ ने कनक भवन बनाया, सोने का भवन स्पेशल, उसमें वो रहने लगी। किंतु अभी तक किसी को संतान नहीं। इधर और एक घटना हुई, देवताओं में और दैत्यों में, दानों में युद्ध हुआ। उसमें देवताओं ने महाराज दशरथ को निमंत्रण किया कि आप ही असुरों को दैत्यों को हरा सकते हैं, हम लोग नहीं उसे जीत सकते, इसलिए कृपा करके आप पधारिए उस युद्ध में और हम लोग की सहायता करें। तो उन्होंने जो ठीक है और गए, युद्ध होने लगा और अंत यदि घनाघोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में इनकी विजय तो हो रही थी महाराज दशरथ की, किंतु उनका रथ का कि चक्के की जो धुरी है वो टूट गई था। तो अब ये बड़े मुश्किल में फंसे, कई रथ पर थी वो झट उतर करके कूद गई और धुरे को अपने हाथों से उठा लिया और वो युद्ध करते रहे। अंत में इनकी विजय हुई। तो जब युद्ध का में विजय हो गई तो जबकि लौटे ले रहो तो महाराज दशरथ बोले, आज तो तुमने इतने साहस का काम किया और हमारी इस विजय तुमने साथ दिया, इसलिए तुम दो बार हमसे मांग लो। दोनों चक्के हमारे तब अचल हो गए थे, इसलिए दो बार मांगो। ने किस लिए बार? तो तुमने मेरी जो सहायता की तो मैं आपकी साधारणी हूं, आप और मैं थोड़े अलग हूं जैसे, इसलिए आपको वरदान देने की जरूरत होगी। आप अपने को ही वरदान दे दीजिए, अच्छा भला है। तो अरे नाम बात तो ठीक है, तुम मेरी अपनी हो किंतु फिर भी मैं तुमको देना चाहूं। अरे तो ठीक है, मैंने वर ले लिया और जब जरूरत पड़ेगी मैं ले, जब नहीं माने तब ऐसा। उसका हृदय कोमल था, बड़ा शांत था, उस समय में कोई विकार नहीं था। अब ये दो बातें सब समय याद रखना होगा। कई कई के चरित्र कुछ दिन और बीते। एक बार ये श्री रामचंद्र जी अपनी मैया की गोदी में कम रहते थे, कैकई लाड प्यार आदि करते थी उसी के गोदी में रहते थे और भरत जी खेलते थे कौशल्या की गोद में। कुछ दिनों के बाद में एक दिन रामचंद्र जी को अपनी गोदी में खिला रही थी तो राम ने उनका ये थोड़ी पकड़ करके बोले, जी मैया तुम बड़ी प्यारी मैया हो, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। बेटा हमारा सर्वस्व तो तुम्हारे लिए है, तुमको मांगने की क्या जरूरत। तो नहीं, मैं कुछ मांगना विशेष चाहना चाहूं। तो मांगो, तो ऐसे नहीं मांगूंगा, आप कह देंगे यहां मांगो मैं जरूर दूंगा, संकल्प करें। अच्छा तो बेटा संकल्प नहीं समझो, मैंने संकल्प कर दिया जो तुम मांगेगी दीजिए। तो तुमसे ये मांगता हूं, जब मेरी शादी होगी और राजगद्दी पर मुझे बैठने का अवसर आएगा तो उस समय तुम महाराज दशरथ से दो बार मांगना कि रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वन में जाए, राम जी का वनवास हो, राज्य न मिले और ये राज्य मिले भरत को, ये मैं चाहता हूं वर। तो रोने लगी वो, ये ऐसा कैसे मैं वर मांग सकता हूं, ये मैं ऐसा वरदान नहीं दूंगी। तो फिर तुमने संकल्प क्यों किया, इसमें कुछ खास कारण है? मैं बहुत खुशी होंगी, हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगा। क्यों? भगवान सोच रहे हैं मैं तो देवताओं के कार्य के लिए आया हूं, धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए, दैत्यों का दलन करने के लिए आया हूं और कुछ विशेष लीलाएं करने के लिए आया हूं। यदि मेरा वनवास नहीं हुआ और राजगद्दी पर मैं बैठ गया तो वो काम पूरा नहीं होगा, इसलिए वो जीत करने लगे। तो वो रोते रोते बोली, जी जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो हृदय से ऐसा नहीं चाहती। अंत में उन्होंने बहुत कुछ कहने पर उन्होंने संकल्प करके पूरा किया, अच्छा ठीक है मैं ऐसा करूंगा। समय चलता गया, एक दिन उनके राज्य में महर्षि विश्वामित्र पधारे, बड़े ब्रह्मवादी ऋषि। पहले तो राजर्षि थे, इसके बाद में ब्रह्मर्षि बने। बहुत कठिन आचरण के द्वारा तब आदमी ब्राह्मण होता था। ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ही ब्राह्मण हो जाएगा, ऐसी बात नहीं कि पहले, अब न तो ब्राह्मणत्व है न वैसे विचार है। सम दम तितिक्षा इत्यादि, सहनशीलता क्षमा इत्यादि गुण हो, ब्रह्म तत्व को जानने वाला हो, तब तो वो ब्राह्मण है, और नहीं तो ब्राह्मण नहीं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, अपने कर्मों से विचारों से कोई ब्राह्मण होता है। गीता में भी ऐसा मतलब है, चतु वर्णम व्यास विष्ट, गुण कर्म विभाग सब, गुण और कर्म से। रावण कुलस्थ ऋषि का लड़का ब्राह्मण था, किंतु उसको कोई भी ब्राह्मण नहीं कहता, उसे क्या कहते हैं, दैत्य दानव कहते हैं। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज तो किसके बेटे थे, दैत्यों के, उनको ब्राह्मण भी पूजा करते हैं। भगवान की पूजा पीछे नृसिंह जी की, पहले प्रहलाद महाराज की जय दे करके तब नृसिंह जी की जय। भक्तों में प्रहलाद बहुत श्रेष्ठ हैं, यदि भक्त बनने की इच्छा हो तो प्रहलाद महाराज जी का आचरण, नहीं तो भक्ति नहीं हो सकती है। तो क्या कह रहा है, बोलिए। विश्वामित्र जी आए, बहुत अवभगत किया, आदर किया। तो ये ब्रह्मर्षि थे उस समय, रात भर रहे। महाराज दशरथ ने उनकी अपने हाथों से सेवा की, कौशल्या और सब लोगों ने उनको प्रणाम किए। वशिष्ठ जी के ये मित्र थे, पहले तो शत्रु थे, पीछे मित्र बन गए। वशिष्ठ जी भी सुन करके इनसे मिलने के लिए आए। उन लोगों में कुछ बातें हुई। जब सवेरा हुआ तो विश्वामित्र जी जाने के लिए तैयार हुए और महाराज से बोले, मैं किसी खास कारण से आया, ऐसे ही नहीं आया। आजकल मैं सिद्धाश्रम में बहुत से दैत्य लोग हो गए, हम लोग जब तपस्या करते हैं, आहुति देते हैं यज्ञ में, हवन के बाद में, तो वहां पर रावण के कुछ सेनाएं हैं और वहां पर मारीचि सुबाहु इत्यादि सब हैं, और मेरे यज्ञ में बाधा देती हैं, हाड़ मांस रुधिर की वर्षा करने लगते हैं और ऋषियों को ऐसे ही खा जाते हैं। तो मैं तो यज्ञ को संपादन करने में, रक्षा करने में समर्थ हूं, बाणों से उनको मैं मार करके सब ठीक कर दूंगा, किंतु मैं तपस्या का आचरण इस समय कर रहा हूं, इसलिए हमारे तपस्या में विघ्न आ जाएगी, इसलिए मैं आपके पास आए हैं। आप दोनों राजकुमारों को, राम और लक्ष्मण को मेरे साथ में दीजिए, ये यज्ञ को बचा लेंगे, हम लोगों की रक्षा करेंगे और आपका कल्याण। महाराज बोली, अभी तो दूध पीना छोड़ा है, ये छोटे छोटे बालक क्या कर सकेंगे, मैं चतुरंगिणी सेना के साथ में चलता हूं, आपकी रक्षा करूंगा। महाराज आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकते, आप में वो सामर्थ्य नहीं है, मैं देख रहा हूं। आप किसी प्रकार से दें, बच्चों का भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा, आप कृपा करके दे दीजिए। जब नहीं दिए तो बोले, तो अभी मैं ऐसा भी संपाद दूंगा कि तुम्हारा वंश तंश सब खत्म। डर गए। उसी समय में वशिष्ठ जी आए, महाराज आप क्या कर रहे हैं, आपके कल्याण के लिए आपके बालकों को मांग रहे हैं, इनको उचित शिक्षा देंगे, धनुष बाण की शिक्षा देंगे, ब्रह्म विद्या की शिक्षा देंगे और भी कुछ कल्याण में देख रहा हूं, आप कोई चिंता मत कीजिए, बच्चों को दे जाओ। उन्होंने अपनी पत्नियों से भी परामर्श करके और अंत में बड़े दुखित चित्त से उन दोनों राजकुमारों को राम और लक्ष्मण की जोड़ी दे दी और दूसरी जोड़ी थी भरत शत्रुघ्न की वहां पर हो गई, लेकर के चले। बड़े प्रसन्न हुए, रास्ते में जाकर के पूछा कि भैया यहां से दो जाने का रास्ता है, एक तो है बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग, उसमें दैत्य दानों से सर्पों से इत्यादि से भरा हुआ है और दुर्गम भी है पहाड़ों के रास्ते से, और एक है सीधा साधा किंतु वो जरा दूर है, उसमें समय लगेगा, और ये जो शॉर्टकट है ये जरा दुर्गम पथ है, किधर से चले। ओ महाराज ने यहाँ पर एक चालाकी की, उन्होंने राम और लक्ष्मण को नहीं दिया था पहले, शत्रुघ्न भरत और शत्रुघ्न को दिया, तो उन्होंने पूछा कि चलिए आसान मार्ग से ही, तो उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है, लेकर के लौट गए। महाराज आपने धोखा किया, ये तो राम लक्ष्मण नहीं है। तो फिर अंत में राम लक्ष्मण को ले आए, इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि दुर्गम मार्ग से ही हम जाना पसंद करते हैं, आप समझोगे अब ठीक है। लेकर गए, रास्ते में जबकि सिद्धाश्रम के पास में पहुंचे, सिद्धाश्रम में ही मेरा जन्म है, गंगा नदी के तट पर जहां पर रामचंद्र पधारे, तड़का सुबाहु कुमारा, गंगा के तट पर उसी आश्रम के पास ही हमारा ये जन्म है। तो देखा जी एक बड़ी भारी राक्षसी, विराट विशाल जैसे पूतना थी, बहुत भयानक उसके आकार, पेट मानो समुद्र जैसा, गड्ढा जैसा, आंखें भी वैसे, और आते ही रुधिर और रक्त की वर्षा करने लगी, और उनको समझ लिया ये मुझे, हम लोगों को मारने के लिए ये राम लक्ष्मण को लाए हैं, तो ठीक है, वहीं से मारने के लिए चेष्टा करने लगी। और रामचंद्र जी ने क्या किया, विश्वामित्र जी ने उनको इशारा किया और उन्होंने एक दुर्गा घास ली और उसको टेढ़ा करके धनुष बना दिया और उस पर एक दुर्गा घास चढ़ा करके उसको बना दिया प्रत्यंचा और उसी से एक बाण लिया, संधान किया और उसके छाती में लगा, वो गिर करके समाप्त हो गया। देवताओं की धुंध भी बजने लगी और असुरों ने चारों तरफ से घेर लिया। रामचंद्र जी ने कहा जी अब देखो, अब आप लोग यज्ञ कीजिए, हम दोनों आदमी दोनों भाई पहरा दे रहे हैं। विश्वामित्र जी ने इसी बीच में राम और लक्ष्मण जी को, विशेष करके राम को, अपनी जितनी भी धनुर्विद्याएं और मंत्र था, सब मंत्र उनको दे दिया। धनुष बाण की ऐसा शिक्षा एकलव्य जैसे ही नहीं, उसमें एक मंत्र होता, एक एक बाण के एक एक मंत्र होते हैं, मंत्र का ध्यान करके बाण चलाने से आग निकलने लगती है, सांप निकलने लगते हैं, हवा होने लगती है, वर्षा होने लगती है, फिर सांप निकल जाते हैं, इस तरह से कितने उसमें हैं। ब्रह्मास्त्र कहलाता है जो संसार को जला करके भस्म कर दे, वो सब विद्याएं इनको दी और फिर यज्ञ करने के लिए बैठे। उसमें में उसी के दो लड़के थे, मरीच और सुबाहु, सुबाहु को मारा तो वो तो मर गया और इसको बाण लगा मरीच को, वहां से कितना हजार माइल दो लंका में जाकर के वो गिरा, उसको बात याद थी, मरा तो नहीं लेकिन वहां पर जाकर के गिरा। इसलिए रावण को उसने समझाया था, उस राम से विरोध मत करो और नहीं तो हमको एक बाण से ही यहां पर कर दिया और हमारे भाई को और मेरी मैया को भी मार डाला, इसलिए उसे सुलह कर दो, सीता को लौटा दो, वो सीता जी लक्ष्मी है अब मैं जानता हूं, किंतु उसको भी माना नहीं उसकी बात। तो उसके बाद में रामचंद्र जी ने देखा जी इनका यज्ञ समाप्त हो गया, तब विश्वामित्र ऋषि अपना यज्ञ पूर्णाहुति की, और पूर्णाहुति के बाद में जब असुर लोग वहां रहे नहीं, बड़ी शांति श्रृंखला तप हो गई। इसके बाद में महाराज महर्षि ने कहा बेटे एक बात करना है, आज ही हमको प्रस्थान करना है महाराज जनक के यहाँ, उन्होंने बहुत आग्रह से मुझे निमंत्रण दिया है, आप अपने साथियों को लेकर के हमारे यहाँ पधारे, हमारी लड़की सीता का स्वयंवर है, आपको जरूर आना। तो उस स्वयंवर में मैं जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी मेरे साथ में चलो। वो लोग भी चले पासी में, वो एक घाट है आज भी है, घाट है रामचरित्र घाट, राम रेखा घाट,
राम रेखा,
वहीं पर चरण चिन्ह उनका है जहां से गंगा को उन्होंने पार किया था, यहाँ पर स्नान किया था, तो वहां पर उन्होंने स्नान वंदना करके गंगा जी का पूजन किया। और पास ही में अहल्यावली गांव है आज भी, यहाँ अहल्या जी को पत्थर से मुक्त किया था, वो स्थान भी बहुत निकट में है, उस स्थान पर गए और अहल्या जी को पत्थर योनि से मुक्त कर दिया, और उसके बाद में वहां पर पहुंचे महाराज जनक के यहाँ। दोनों ये बालक और ऋषि लोग बड़े बड़े अगाध बोध वाले ऋषि महर्षि के साथ महाराज जनक को पता लगा अपने पुरोहित वही अहल्या के बेटे गौतम के पुत्र, क्या नाम था,
सदानंद
सी, उनको अभिवादन करने के लिए आए। महाराज जनक ने प्रणाम किया और उनको नगर से बाहर किंतु बड़े सुरम अपनी वाटिका में ही उनको ठहराया, वहीं पर रहे। रामचंद्र जी सवेरे उठ करके शाम को थोड़ा सा भोजन करने के बाद में महर्षि उनकी विश्वामित्र के पैरों को दबाते थे, राम और लक्ष्मण, जब तक गुरु जी नहीं सो जाते, और सब प्रकार से उनके पूजा के लिए फूल, आरती करने के लिए सब चीजें, आचमन के लिए पानी, स्नान करने के लिए ये सारी व्यवस्था वो कर देते, उनके सूखे कपड़े ले जाते जब स्नान करते नदी में, इसके बाद नंगीले कपड़े ले आते और सब प्रकार से, और फिर सवेरे उनसे पहले उठ जाते, गुरु जी के उठने के पहले ही उठ जाते, सारी व्यवस्था करके रखते, भगवान होकर के भी। हम लोगों में बहुत से ऐसे होंगे जो गुरु जी सो जाने के पहले ही खा पी करके आराम से सो गए, और गुरु जी जगे तो कोई बात नहीं, 6 बजे गुरु जी उठ गए, 3:30 बजे और उठे 6 बजे, साधन भजन कुछ किया नहीं, तो ऐसा नहीं। राम स्वयं भगवान होकर के भी इन सब नियमों का पालन करते थे, गुरु की सेवा कैसे होती है इसको जीवन में सीख लिया। तो जो गुरु नहीं सेवा कर सकता है वो भगवान की क्या सेवा करेगा। इसके बाद में सवेरा हुआ, वशिष्ठ उन्होंने आज्ञा ली अपने गुरु की, स्नान वंदना अपना सब ठीक करके, और सवेरे बगीचे में फूल चयन करने के लिए गुरु जी के लिए जो पूजा करेंगे वो वन में गए। वो बहुत वन बहुत रमणीय और बहुत सुंदर था, अब स्वयंवर होने वाला है, इसलिए महाराज जनक की लड़की जो भूमि से पैदा हुई थी और जो निजा किसी के गर्भ से नहीं, उसका स्वयंवर होने वाला था। मैया ने आज उसे बहुत सुंदर सजा दिया, 16 श्रृंगार आभरण कर दिए, केवल सुंदर सिंदूर देना बाकी, और बाकी सब श्रृंगार उन्होंने किए, जैसे कुंवारी लड़कियों का होता है। अपनी सहेलियों के साथ में भवानी की पूजा उमा देवी की पूजा करने के लिए उसी वन में गई। तो जिस समय वन में गई तो ये भी फूल चयन करने के लिए, देवी को अर्पण करने के लिए गई, और रामचंद्र भी फूल चयन कर रहे हैं, इधर सीता भी फूल चयन कर रही है। थोड़ा सा दूर में हठात कुछ आहट पा करके राम ने देखा और उन्होंने देखा, दो दो आंखें चार हो गई। बस एक ही बार दर्शन से सीता का दिल चुरा लिया राम ने, राम का हृदय चुरा लिया सीता ने। राम कुछ चिंतित हो गए। लक्ष्मण से बोले, भैया आज तो मुझे विष पान करके मरना है। तो क्यों, क्या हो गया? रघुकुल की ये रीति है, कभी अनर्थ नहीं कर सकता। जिस लड़की के साथ में हमारा कोई संपर्क नहीं है और उस लड़की के तरफ में हमारा ध्यान चला गया, ये तो बहुत गंदी बात है मेरे लिए। इसलिए यह पवित्र भावना कैसे आ गई? तो वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण, आपने कहा महाराज इच्छाकु और रघुकुल की यह रीति है, अधर्म में भी उनकी रुचि नहीं जाती है रघुवंशियों की, तो इसका मतलब ये सीधा साधा सा है, इसी के साथ में आपकी शादी होने वाली है। मैं समझ गया, इसीलिए ऐसा हुआ, और उसकी भी ऐसी ही है। इसके बाद में गुरुजी के पास में गए, फिर पूजा अर्चन इत्यादि किया गुरुजी ने भी। इसी समय में महाराज दशरथ का वो गुरुजी के लड़के, पुरोहित के लड़के सदानंद जी आए, निमंत्रण दिए, आज स्वयंवर होने वाला है, देश देश के राजा आए हैं। सीता एक धनुष को, जबकि वो छोटी सी बालिका थी, शंकर जी का यह धनुष बहुत लंबा चौड़ा विशाल, उन्होंने बाएं हाथ से सीता जी ने उठाया और लिप पोत करके वहां रख दिया, फूलों से उसकी पूजा कर दी जैसे उसके पिताजी ने कहा था। ये देखकर के महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की थी, मैं उसी के साथ में अपनी लड़की की शादी करूंगा जो धनुष को उठाकर के उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा सके। इसीलिए देश देश के राजा वहां पर उपस्थित थे, बड़े बड़े भी देवता लोग भी मनुष्य के रूप में, दैत्य दानव भी मनुष्य के रूप में वहां पर सीता जी से विवाह करने के लिए और धनुष को उठाने के लिए आए थे। इसलिए महाराज ने भेजा, विश्वामित्र जी यहाँ पर पधारे और स्वयंवर को अपने आंखों से यहाँ पर देखे। ये उन्होंने अपने राम लक्ष्मण से कहा कि प्रस्तुत हो जाओ, मेरे साथ में चलना है। कितने, और राम लक्ष्मण जी कितने सुंदर हैं, ये सरस्वती की वाणी, गणेश की विद्या वहां अटक जाएगी। वाणी की तो आंख नहीं, आंख की वाणी नहीं, आंख तो रूप देखती है तो उसको तो वाणी नहीं है जो वर्णन कर सके, और वाणी की तो आंख नहीं फिर उनका रूप वर्णन कैसे करे। और आज तक जितने कवि लोग हैं सब उदाहरणों को दूसरों में लगा करके उसको क्या झूठा बना दिया, ऐसी कोई उपमा नहीं रह गई है जिस उपमा को नए रूप में इनकी तुलना करूं। जय राम लक्ष्मण, राम कितने सुंदर है, सचमुच में बात भी है, कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। तब ये लोग प्रस्तुत हो रहे हैं, इतने में एक कीर्तन तो सुना दीजिए भाई।
बोलो श्रवण रामचंद्र की जय, जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
सीताराम भज प्यारे तू
सीताराम भज प्यारे तू सीताराम
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
रघुपति राघव राजा राम राजा राम पतित पावन सीताराम
सीताराम दशरथ राज दुलारू राम
सीताराम दशरथ राज
यह बात चारों तरफ में फैल गई थी सीता जी का स्वयंवर होने वाला है, इसलिए विश्व के समस्त राष्ट्रों के राजकुमार बड़े बड़े बलि राजा दैत्य दानव देवता लोग भी वहां पर किसी न किसी रूप में। अभी दो दिन पहले की बात है, उस समय कह रहा हूं आज से दो दिन नहीं, रावण ने सीता जी का स्वयंवर जनक की कन्या का, और जरा सीता जी को तो देखे तो उसने किसी छल बहाना करके कोई रूप बना करके उनको तो देखा, मुग्ध हो गया, मुझे तो इस लड़की से जरूर शादी करना है। इसलिए वो देखा जैसे ये तो बिना धनुष उठाए तो होगा नहीं, तो जरा धनुष को उठा करके मैं देखूं तो रात में गया अकेले और धनुष को उठाने की चेष्टा की, बड़ी मुश्किल से हिला भी नहीं, थोड़ा सा उठाया तो उसी के अंदर में दब गया। अब तो उस धनुष के नीचे दबने से विवश हो गया। बहुत मुश्किल से किसी प्रकार से वो निकल करके बाहर आता है। अब इस धनुष को प्रणाम करता हूं, अब नहीं आऊंगा। ऐसे देवता लोग भी आए, सब राजकुमार एक साथ में 10,000 राजा लोग मिल करके धनुष को उठाने की चेष्टा कर के ले आए वहां पर राजकुमारों के सामने, किंतु हिला न सके। मानो पृथ्वी से उसका ऐसा संबंध हो गया है, कोई नहीं उठा सकता। उस समय ऐसी स्थिति देख करके महाराज जनक सभा मंडप मंच पर पधारे और बोले, मुझे बड़ी ग्लानी हो रही है। मैं जानता जी ये पृथ्वी वीर शून्य है तो ऐसी प्रतिज्ञा मैं कौन करता। मुझे नहीं पता था ये पृथ्वी आज धारित्री पृथ्वी देवी वीरों से शून्य हो गई है। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी बड़े कम कमा उठे और वहां पर बोले, महाराज जनक आप क्या कर रहे हैं? आपको तनिक भी ज्ञान नहीं है। यहाँ रोकू के कोई भी राजकुमार या कोई भी व्यक्ति उसके सामने आपको ऐसी ढिठाई पूर्ण शब्दों को नहीं कहना चाहिए। अरे इस धनुष की बात क्या, इस सारी पृथ्वी को विश्व ब्रह्मांड को लेकर के मैं गेंद की भांति लेकर के दौड़ सकता हूं, पृथ्वी की परिक्रमा लगा दो। यदि अभी रामचंद्र जी का और गुरु जी का आदेश सुनते ही सब सभा पे एकदम थर मार गए, शांत हो गई, पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। किंतु महाराज जनक को और उनकी पत्नी को और जनकपुर के निवासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ आशा अक्षुण आशा हुई, अब तक तो था जी ऐसा कोई वीर नहीं है और ये क्वारी लड़की रह जाएगी, किंतु जिस प्रकार से ये छोटा राजकुमार बोल रहा है मालूम होता है कुछ अनहोनी होनी है। तो जब कोई नहीं उठा सका और इस प्रकार की घटना हुई, उस समय में महर्षि विश्वामित्र जी ने आराम से कहा, अब तो कोई वीर उसको उठाने लायक नहीं रह गया है, तो तुम प्रयास कर सकते हो। रामचंद्र जी सुनकर कुछ लज्जित से हुए, कुछ मुस्कुराए भी, किंतु लज्जित होकर के सिंह के शावक के समान उठे, बड़ी नम्रता से सिर को नीचा किए हुए, कोई अभिमान नहीं, हमें तो पत्पत पर अभिमान, अभिमानों से घिरे हुए हैं। अभिमान मत करो किसी भी विषय का, कृष्ण और हमारे राम से सीखो ये कैसे जीवन का निर्वाह करना चाहिए, गुरुजनों का कैसा आदर करना चाहिए, माता पिता का, गुरु का कैसा सम्मान करना चाहिए। नहीं कर सकते भक्ति कैसे हो। यदि माता पिता सचमुच में सदाचार युक्त हैं तो पहले वो गुरु है, पीछे दीक्षा वाला गुरु, और उसके पीछे तो भगवान कृष्ण ही आ रहा। इसलिए यदि सदाचार शून्य और उसके हिरण्यकश्यपु और रावण की भांति हो तो मैं नहीं कहता, किंतु सदाचार संपन्न हो माता पिता तो उनका आदर करना चाहिए। मैं तो भाई संन्यास लेने के बाद भी अपनी मैया का चरण छूता था और पिता का।
महाप्रभु
जी ने ये भी कहा, मैया यदि कहो तो मैं संन्यास छोड़ करके फिर तुम्हारे पास आए, जानते थे जो मैया मेरी ऐसी नहीं हो, ऐसे नहीं कहे। तो ये सब बहुत उदाहरण है। तो उस समय में रामचंद्र जी सिंह के समान उठे, धनुष के निकट आए और उसे प्रणाम किया। क्यों? शंकर जी का धनुष था, अपने भक्त को बहुत आदर देते। और इधर लक्ष्मण जी के तरफ में देखा, लक्ष्मण जी ने क्या किया, वीरासन से बैठ गए जैसे हनुमान जी बैठते हैं और पृथ्वी को अपने पैरों से दबा दिया। क्योंकि धनुष उठाते ही वो पृथ्वी उड़ जाएगी, फिर भूचाल आ जाएगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। धनुष का संबंध पाताल से है, क्योंकि सीता भी तो पाताल से निकली है, बहुत से कारण है। इसलिए लक्ष्मण जी कौन है? शेषनाग, ये स्वयं बलदेव जी हैं। भगवान का द्वितीय शरीर है, पृथ्वी को धारण करना, भूमंडल को धारण करना, या समस्त ब्रह्मांड तक को उनके श्वास जो आती है वही गुरुत्वाकर्षण शक्ति बनती है, जो कि परस्पर को धारण किए हुए है। इन्हें शेष जी के रूप में भगवान लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को दबा दिया, और रामचंद्र जी ने पल झपते ही कब धनुष उठाया और कब प्रत्यंचा चढ़ाने की चेष्टा की, और धनुष का तीन खंड टूट करके गिर गया, ये पता नहीं है। केवल बहुत जोर से शब्द हुआ, इतने जोर से शब्द हुआ कि पृथ्वी में न जाने क्या हो गया चारों तरफ। उधर परशुराम जी भी सुने, अब इधर तो जहां धनुष टूटा चारों तरफ में बड़ा आनंद होने लगा, महिलाएं गाने लगी, सीता के हाथ में दिया गया वरमाला बड़ी सुंदर खुशबूदार, और सीता जी भी तो ऐसी बैठी नहीं थी, केवल सिंदूर के अतिरिक्त सब श्रृंगार उनको कर दिया गया। एक तो ऐसे ही सुंदरी, जो कि कोई आभूषण न रहे तभी सुंदरी, स्वयं लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी जी सीता जी हैं, वो उनको ले आई सखियां। किंतु आज प्रेम इतना अगाध हो गया रामचंद्र जी के प्रति, उनके प्रेम से उनके हाथ भी ले सके, उठा नहीं सकी वरमाला के देने के लिए, राम के तरफ में देख नहीं सकी, विवश हो गई, आंखों में आंसू भर गए। और फिर सखियों ने सहायता की, उनके दोनों हाथों को ऊपर उठवाया और रामचंद्र जी के गले में वरमाला दी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यहां तक तो हुआ ये, फिर बड़े शान शौकत से बधाई और ये बजने लगी। महाराज ने कहा अभी तुरंत हम एक दूत भेजे महाराज दशरथ के यहां, ये अपने पुत्र परियन भाई बंधु सबको लेकर के महाराज दशरथ यहां है, और उनकी उपस्थिति में ये विवाह होगा। एक यहां से ब्राह्मण गया न्योता देने के लिए, ब्राह्मण नहीं बल्कि पहले नाई जाते थे, अब नाई का तो दिन गया, नाई जाते थे चिट्ठी हल्दी लगा करके और वो हाथ की लिखी हुई। मैं ऐसे बहुत से पत्र हम लिख चुके हैं स्वस्ति श्री इत्यादि, तो वो लेकर के गया महाराज दशरथ को निमंत्रण करने के लिए। सभा में पहुंचा, उन्होंने बड़ा आदर किया, कहां से आए हो? महाराज जनक से, जनक के यहां से, बहुत आदर किया उस नाई का। तो इसने कहा कि महाराज ने आपको निमंत्रण दिया है, राम और लक्ष्मण की शादी वहां पर, केवल राम की शादी अभी तय हुई है, अपने बंधु बांधव अपने पुरोहित सबको लेकर के पहुंची है वहां, परसों ही शुभ दिन दिवस है, इसलिए आज नहीं तो कल ही आप यहां से कूच कीजिए सेनाओं के साथ में, राजकुमारों के साथ में, महर्षि वो वशिष्ठ इत्यादि के साथ। बड़े प्रसन्न हो जी, इसके लिए तुमने ये जो शुभ समाचार दिया, आज मैंने समझा विश्वामित्र किस लिए आए थे, और महर्षि वशिष्ठ जी ने ऐसा क्यों हमको देने के लिए लड़कों को कहा था, आज मुझे मालूम हुआ। इसलिए ऋषियों की बातों में जगत मंगल छिपा रहता है, हम लोग उसको नहीं समझता, साधु संत लोग जगत का कल्याण चाहते। तब फिर उन्होंने कहा जी इसको कुछ दे, तो वो सोने का हार और क्या क्या चीजें वस्त्र और ये सब ले आकर के उसको देने लगे। तो नाई क्या बोला, नाई बोला जी महाराज मैं सीता को अपनी कन्या समझता हूँ, इसलिए जब कन्या का दान देने का प्रश्न है मैं उसे कोई उसका कोई भी चीज कैसे ले सकता हूँ, ये तो हमारी वैदिक परंपरा नहीं है हिंदुओं की। मैंने लड़की समझ लिया है उसको, हमारा जनकपुरी का सभी लोग उसको अपनी कन्या मानते हैं, गर्व है जो ऐसी सुंदरी लड़की और गुणी है। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो कि वहां के ऐसे यदि नाई हैं तो और लोगों की तो बात क्या, महाराज जनक की तो प्रशंसा सुन रखी ही थी। फिर इस प्रकार से अब बारात लेकर के अब चल रहे हैं और इधर में हनुमान जी की भी आरती रूपी ये चल रहा उत्सव भी होने जाएगा, इसलिए अपनी कथा को यही तो विराम देता हूँ, क्योंकि उधर में कुछ असुविधाएं होती हैं, इसलिए अब आगे का प्रसंग कल सुनाएंगे। आज कुछ अधिक आए हैं, कल और भी अधिक आदमी श्रोता आए और कथा का भी लाभ उठाए, नई नई बातें बड़ी भीतर में रहस्यपूर्ण बातें हैं, इसलिए आप लोगों को सुन करके वैसा ही जीवन चरित्र बनाना है और ऐसा ही सुखी रहना और शांति। आज यही कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय जय राधा रमन,
जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय।